daily program, 6th of April 2007.
Thank you. ജയംശപാദ പരമഹംസ പരീവ്രജകാര്യസ്തോത്രശ്രീമദ്ശിവാംഗ്രേശലഹരണാരവിന്ദഭക്തിധാമസ്വാമി ജഗദ്ഗുരുസ്വപ്രഭാദകീ ജയ അനന്തകോടിവൈഷ്ണവൃന്ദ കീ ജയ രാമാചാര്യശലഹരിദാസ്ഠാകുട്ടീ ജയ പ്രേം സഹസകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈതഗദാധര ശിവാശാദിഗോഭക്തവൃന്ദ കീ ജയ ശ്രീ ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണ ഗോപഗോപിനാഥ ശ്യാമകുണ്ഡ രാധാകുണ്ഡ ഗിരി ഗോവർദ്ധന കീ ജയ ബ്രജമി വൃന്ദാവന ധാം കീ ജയ നവദീപമായപുരധാം കീ ജയ ജഗന്നാഥപുരിധാം കീ ജയ ഗംഗാമായി കീ ജയ ജമുനാമായി കീ ജയ ഭക്തിദേവി കീ ജയ തുളസി നാരായണ കീ ജയ സമാവേത ഭക്തവൃന്ദ കീ ജയ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ശ്ലാഘയാക്ഷുന്മിളിതം ജന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമ ശ്രീചൈതന്യമനോമീഷ്ടം സ്ഥാപിതം ജന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകൃതാമധ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീജതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വിഷ്ണുവാംശ്ച ശ്രീരുപം സാഗുജാതം സഗണാരഘുനാഥാന്തം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാന് സഹഗണലളിതാശാഖാന്തികാംശ്ച ഹേ കൃഷ്ണകരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത ശ്രീരാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ശ്രീഹരിപ്രിയ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈതഗദാധര ശിവാശാദിഗോഭക്തവൃന്ദ ശ്രീ ശ്രീ രാധാ കൃഷ്ണ ഗോപ ഗോപിനാഥ ശ്യാം കൃഷ്ണ രാധാ കൃഷ്ണഗിരി ശ്രീ പ്രഭുപാദ കീ ജയ പ്രഭുപാദ ഭഗവത് ഗീത യഥാരൂപ കീ ജയ പുസ്തക സംഖ്യ 118 और 119 യദാ തേ മോഹം കലിലം ബുദ്ധിഃ വ്യതിരസിതരിഷ്യതി തദാ ഗന്താസി നിർവേദം ശ്രോതവ്യസ്യ ശ്രുതസ്യ ച ശ്രുതി വിപ്രതിപന്നാ തേ യദാ സ്ഥാസ്യതി നിശ്ചലാ സമാധി അചലാ ബുദ്ധി तदा
योगम
अवाप्स्यसि। यदा ते मोहकलिलम् बुद्धिर्व्यतीतरिष्यति तदागन्तांसि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्नाते यदार्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि।
यदा ते मोहकलिलम् बुद्धिर्व्यतीतरिष्यति तदागन्तसि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि अस्तदा योगमवाप्स्यसि।
कोई और पढ़ना चाहता? माता
यदा ते मोहकलिलम् बुद्धिर्व्यतीतरिष्यति तदागन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य च श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यसि निश्चला समाधावस्तदा अस्तदा योगम् अवाप्स्यसि।
यदा
यदा
जब ते तुम्हारा मोह मोह के कलिलम घने जंगल के
घने जंगल को
बुद्धि बुद्धिमय दिव्य सेवा व्यतीतरिष्यति पार कर जाती
है
तदा
तदा
उस समय गंता
गंता
तुम जाओगे निर्वेदम विरक्ति को श्रोतव्यस्य सुनने योग्य के प्रति श्रुतस्य सुने हुए का श्रुति वेदिज्ञान के विप्रतिपन्ना कर्म फलों से प्रभावित हुए बिना तुम्हारा यदा
यदा
जब
जब
स्थास्यति
स्थिर
हो जाएगा
निश्चला
एक निष्ठ समाधव दिव्य चेतना या कृष्ण भावना
दिव्य चेतना या कृष्ण
अचला
अचला
स्थिर
बुद्धि
बुद्धि योगम आत्मसाक्षात्कारवाप्स्यसि तुम प्राप्त करोगे। अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमदेशी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुनने हुए तथा सुनने योग्य सब प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकार नहीं भाषा से विचलित न हो और वह आत्मसाक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्मकांड से विरक्ति हो गई। जब मनुष्य कृष्ण श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है तो वह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतया अन्य मनस्क हो जाता है भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों न हो। भक्त परंपरा के महान भक्त तथा आचार्य श्री माधवेन्द्रपुरी का कहना है संध्या वदन भद्रमस्तु भवतो भो स्नान तुभ्यम नमो भो देवा पितरश्च तर्पण विधौ नाहं क्षम क्षम्यताम यत्र क्वापि निषद याद कुलोत्तमस्य कंसद्विषः स्मारम् स्मारम् अगम् हरामि तदलं मन्ये कि मनन्ये मे। हे मेरी त्रिकाल प्रार्थना हो, तुम्हारी जय हो। हे स्नान, तुम्हें प्रणाम है। हे देव पितृगण, अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में मैं असमर्थ हूँ। जब तो जहाँ अभी बैठता हूँ, यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का स्मरण करता हूँ और इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान तथा त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन स्नान, पितृतर्पण आदि नव दीक्षितों के लिए अनिवार्य है। किंतु जब कोई पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो और कृष्ण के दिव्य प्रेम भक्ति में लगा हो तो वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उन्हें पहले से ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। यदि कोई परमेश्वर श्री कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसे शास्त्र में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों के उद्देश्य श्री कृष्ण तक पहुंचना है तो और अपने को अपने आप को अनुष्ठान आदि में व्यस्त रखता है, वह केवल अपना समय नष्ट करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शब्द कर्म की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों की परिधि से भी लांघ जाते हैं। कोई समाधि में ऐसा कथन का अर्थ यह होता है कि वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है अथवा उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावना में अपने सारे कर्म करना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा या भगवान के एकनिष्ठ भक्त को न तो वेदों की अलंकार वाणी से विचलित होना चाहिए, न ही स्वर्ग जान के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है और वह कृष्ण से सारे प्राप्त सारे उद्देश्य उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। और ऐसे कार्य के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। उसे कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा। ओम ज्ञान निरांतस्य ज्ञान इस दो श्लोकों द्वारा हमें श्री प्रभुपाद ये बताते हैं कि कृष्ण भावनामृत ही सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए सीधा, सरल और स्पष्ट मार्ग है। वेदों की अलंकारमय भाषा में लोग उलझे जाते हैं। इनको भगवान कई जगह वेदवाद रता है, वेदवाद रता नान्यश्चना वेदवाद सिर्फ भी वेदों की बातों में ही उलझे रहते हैं। हाँ, वेद ये कहता है, वो अपनी पंडिताएं बताने के लिए वेद ये कहता है, वेद वो कहता है। और वेदों के अनुष्ठानों को दूसरों को बताते हुए सलाह देते हैं, यदि आपको इसकी बीमारी है या शनि की पनौती है तो वेदियों कहता है कि शनिदेव के पीछे जाओ। तो अलंकार की भाषा द्वारा हमें बहुत सारे अपने भौतिक कारणों या भौतिक इच्छाओं की तृप्ति के लिए अनेक अनेक अनुष्ठानों में वेद हमें उलझे रखते हैं। वेद कल्पतरु भी कहलाता है, सब इच्छा पूर्ण करने वाला है, लेकिन मनुष्य की इच्छा फिर भी वो अधूरा का अधूरा रह जाता है, क्योंकि उसकी अंतिम सिद्धि जो समाधि अचल समाधि की बात है, वो तो कृष्ण भावना में ही सिद्धि स्थिर हो सकती है। परम तत्व पाने के लिए कितने कितने कड़े अनुष्ठान करने पड़ते हैं। वो अनुष्ठान है हर एक युगों में भी अलग अलग ढंग से बताए गए हैं। जो सत्ययुग में अनुष्ठान होता है वो त्रेता में काम नहीं करता, जो त्रेता में काम जो बताया गया है वो द्वापर में नहीं करता, और जो द्वापर में काम करता था वो कलयुग में नहीं करेगा, और कलयुग में तो ये तीनों युगों के अनुष्ठान काम नहीं करते, जैसे यज्ञ दान और तप की क्रिया। यज्ञ त्रेता युग में होते थे, दान द्वापर में होता था और तप सत्य युग में होता था। ये अनुष्ठान क्रमशः आयुष्य की जो मर्यादा थी उसके अनुसार क्रमशः हमें लाभ देने वाला था। धीरे धीरे लंबी आयुष्य में तप करना आवश्यक था, उसे कम आयुष्य में यज्ञ की विधि बताई गई, उसे भी कम आयुष्य में चलो दान तप दान इत्यादि करो। लेकिन भगवान सत्ययुग में 60,000 साल तक विश्वामित्र ने भी तप किया था पवित्र होने के लिए, पुण्यता प्राप्त करने के लिए, फिर भी उनकी समाधि स्थिर नहीं हुई। अमेरिका के एक गुरु से वो चलित हो गए। उसी तरह जो अनुष्ठान त्रेता युग में ऋषि मुनियों द्वारा यज्ञ संपादित करते को कहते थे, वो यज्ञ संपादित भी बहुत कठिनाई से प्राप्त होती। पहले तो यज्ञ एक व्यक्ति नहीं कर सकता था, 6-6 व्यक्ति की आवश्यकता होती थी, और उसके उपरांत यज्ञ की विधि में दखलगिरी करने वाले दुष्टों राक्षसों जो अवरोध डालते थे, सारे यज्ञ को दूषित करते थे, मूत्र मल इत्यादि हड्डियां मांस इत्यादि डाल के लहू डाल के, इन लोगों का इतना ईर्ष्यालु स्वभाव था कि रामचंद्र जी को भी अवतार देना पड़ा ये दुष्टों का नाश करने के लिए। तो ये यज्ञ विधि मुश्किल थी। उस समय भी आयुष्य मर्यादा 10,000 साल की बताते हैं। उसके बाद द्वापर युग में 1,000 साल की आयुष्य मर्यादा में सज्जनों के लिए ध्यान की व्यवस्था थी और वो भगवान की सेवा में, यानी कि भगवान के श्री विग्रह मंदिरों में बड़े बड़े धन दौलत इत्यादि देकर तो सज्जन लोग कर सकते थे। तो सज्जन लोग सब जगह थोड़े थे, लेकिन उस समय का जो इतिहास बताता है 5,000 साल का, तो कितनी समाज रचना की विशिष्टता, उनका जो आदर सत्कार की भावना इत्यादि जो अपने वैदिक साहित्य में बताई जाती है, रामायण महाभारत इत्यादि प्रसंगों में भी वो कितनी प्रतिष्ठित उन लोगों की सारे जीवन की रहनी करनी थी, इनका स्टैंडर्ड कितना ऊंचा था, वस्त्र परिधान व्यवहार इत्यादि कुशलता होती, और अपने को भौतिक अहंकार में मैं कुछ हूं, उनकी शौर्य की बातें देखो, सभी कितने कितने उदात्त चरित्र हमें दिखाई देते हैं द्वापर युग। तो कहने का मतलब है कि ये युग के अनुसार वेदों में ये सारी विधियां बताई गई है और उसके अनुष्ठान के प्रति सिद्धि प्राप्त होती थी। कलयुग में सारे अनुष्ठान के लिए हम लायक नहीं रहे, युग ऐसा है। तो कृष्ण भावनामृत यदि हमें सीधा उपलब्ध है, जिसके द्वारा वेदों के अनुष्ठानों के प्रति जो अंतिम लक्ष्य की भावना बताई जाती है कि ये सब अपने युग में जो सुचित धर्म का पालन करके पवित्र हो सकते थे, बाद में भगवत प्राप्ति का विषय शुरू होता है, यानी कि भक्ति का विषय शुरू होता है। पहले नहीं, कोई सीधा भक्ति करने में समर्थ था ही, भक्ति विषय ऐसा है कि वो कंक्लूसिव, हमें निश्चयात्मक भाव से एक अंतिम लक्ष्य पर सीधे पहुंचाने की पद्धति है। उसके लिए कैसा हमें लायक बनना चाहिए, ये यदि तीनों युगों में भौतिक रीति से कितनी मेहनत से हमें भौतिक रीति से पराकाष्ठा यानी कि पूर्ण सिद्धि के लिए प्रयत्न करने पड़ते थे, उसके बाद ही
हम भगवान के तत्वों को समझने के लिए ज्ञान या दिव्यता की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर सकते थे। तो भगवान ने अपने नाम द्वारा इस युग में भक्ति भी सिखाई और पूर्णता भी सिखाई चैतन्य महाप्रभु ने, क्योंकि युग के अनुसार एक तो समय की अवधि कम, अपने जीने की जो अवधि कितनी कम, 100 साल जिया भी बहुत हो चुका और उतने उदाहरण तो लाखों में 2-4 व्यक्ति ही 100 साल तक जी सकते हैं, सभी थोड़े 100 साल जीते हैं। तो कहने का मतलब है ये कलयुग इतना दूषित युग है, फिर भी उसमें जब भगवान नाम की महत्ता देकर हमें तुरंत ही कृष्ण भावना मृत बनाने का जो प्रयत्न है, भगवान के नाम की शक्ति का परिचय, वो सारे वेदों के अनुष्ठानों को उल्लंघन करके दिया जाता है, क्योंकि पहले लायका थी नहीं तो इन अनुष्ठानों को पालन करने की आवश्यकता नहीं है और न तो उसमें उलझे रहने की इसीलिए कृष्ण भावना मृत एक सीधी सो एलिवेटर जैसा दिया, अन्य अन्य सोपान माने जाते हैं, एक के बाद क्रमानुसार आप धीरे धीरे चढ़ो, जीने पर जैसे चढ़ते हैं, अरे एलिवेटर ले लो कृष्ण भावना मृत सीधा चढ़ जाओ। तो ये जो दो श्लोक हैं वो भगवान के मत के अनुसार अर्जुन के लिए नहीं सबके लिए शिक्षा दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान कि यदा ते मोह कलिलम, यानी कि मोह पैदा करने वाले ये वेदों के विषय है, त्रिगुण्या विषय वेदा नेस्त्र गुण्य भवाच, ये वेदों के विषय में हम भौतिक सिद्धि के लिए ही तो प्रयत्न करते हैं ना, पवित्र होना यानी कि पुण्यता पाना अच्छे शारीरिक कर्मों द्वारा ही हम कर सकते हैं, तप करना भी शरीर द्वारा निश्चयात्मक भाव से हट पूर्वक तप करना पड़ता है, सामान्य भी तप थोड़ा कर सकता है, या तो जबरदस्ती से सहन करता है उसे तप थोड़ा किया जाता है, तप करना यानी कि अपनी वॉलंटरी सिचुएशन स्वयं निश्चय पर जब आता है, और इतने सारे लोग कहां आ सकते हैं, लोगों में तो भावना भी नहीं है कि निश्चय करना कि ये यही एकमात्र मार्ग है। तो कहने का मतलब कि सभी लोग तप थोड़े कर सकते हैं, सभी लोग यज्ञ थोड़े कर सकते हैं, सभी लोग थोड़े दान कर सकते हैं। तो जीवन की भौतिक सिद्धि के लिए भगवान कहते हैं कि मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे, हजारों मनुष्य में से कोई ही एक भौतिक सिद्धि के लिए भी प्रयत्न करता है, और यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः, हजारों ऐसे सिद्ध हुए में मुझे असली रूप से जानने वाला तो कोई एक ही होगा, वो कौन होगा, जो ज्ञान के अनुसार उसे पहचान हो जाती है कि नहीं कोई परम तत्व है, तो वो तत्ववादी कहलाता है, वदन्ति तत्व विदस्तत्वम यद् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान की शक्ति, वो कम से कम उनको तत्व का ज्ञान होता है, और तत्व का ज्ञान 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, जो ज्ञानी लोग हैं तो तत्व ज्ञान का अर्थ ब्रह्म ज्योति तक पहुंचते हैं, जो ध्यानी लोग होते हैं वो परमात्मा तक पहुंचते हैं, जो अपने ही हृदय में परमात्मा पर ध्यान लगाकर समाधि लगाना प्रयत्न करते हैं, लेकिन भक्त लोग भगवान पर, भगवान के व्यक्तित्व उनके साथ सब प्रकार की भावनाओं लेकर जुड़े हैं, व्यवहार कर रहे हैं और प्रेम पा रहे हैं। तो ये जो अनुभूति का विषय, परम सत्य की अनुभूति का विषय में ये 3 अवस्थाएं बताई गई है, लेकिन जो कम से कम यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। जब भगवान कहते हैं उसका मतलब ज्ञान तक, मुझे ज्ञान द्वारा जो समझने वाले हैं वो कोई विरल होगा, हजारों में से, हजारों सिद्धों में से कोई मुझे जानने, तत्व से जानने वाला, पर लेकिन ऐसे जानने वाला का भी क्या फायदा। भगवान उनको तो हजार हजार जन्मों मनुष्य जन्म लेने पड़ेंगे। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवाम माम प्रपद्यते, अनेक अनेक मनुष्य जन्म में ऐसे ज्ञानी को घुटना पड़ता है। कहां तक? जब तक वो मेरी शरण नहीं लेता। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवाम माम प्रपद्यते, अनेक अनेक जन्म बाद जब वो मेरी शरण में आता है दर, और वो भी कैसे? वासुदेवम सर्वमिति, सिर्फ तत्व ज्ञान आवश्यक नहीं, उसे ऊपर छोड़ो, जो कुछ है उपस्थित है, अप्रकट अप्रकट सब कुछ, आध्यात्मिक और भौतिक सब कुछ में वासुदेव श्री कृष्ण। इस तत्व पर आने वाला, और जब वो मेरी शरणागत होता है, जानने जानने में कितने स्तर है। हम भौतिक रीति से अपना जीवन का स्टैंडर्ड ऊंचा बनाना चाहते हैं। हम तो हमारे कुल की ये मर्यादा है, ये है वो है करके भौतिकता से हम सिद्ध होना चाहते हैं, लेकिन इन सिद्धियों में सब कोई भगवान को थोड़ा जान सकता है, और जानने वाला कोई विरल होता है, और जानने वाला भी तत्व से थोड़ा जानता है लेकिन परिचय थोड़ा करता है भगवान का, क्योंकि उसे ध्यान भी तो लेना और भक्ति भी तो करने की बाकी होती है। जानने से कोई इतना फायदा नहीं, और ध्यान धरने से भी बहुत ज्यादा उसे फायदा नहीं होता, भक्ति से पूर्ण फायदा होता है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि वासुदेव सर्वमिति, जानना होता है और माम प्रपद्यते, इसलिए उनकी शरणागत होना होता है। तो वो सब महात्मा सुदुर्लभ, ज्ञान होना, भगवान का परिचय करना, भगवान की शरणागत होना, ये तीनों तीनों चीज की जब तक मनुष्य में आवश्यकता बाकी रह जाती है तो कैसे प्रगति मानी जाती है। बेहतर है कृष्ण भावना युक्त तो होकर सीधे ही हमें इन सब चीजों की जानकारी होती। भगवान श्री कृष्ण के भक्ति करते करते सीधे भगवान के बारे में जो अद्वितीय ज्ञान है, जो दिव्य ज्ञान है, उसकी प्राप्ति होती है। वासुदेवी भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनेत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च अहितुकम, ज्ञान और वैराग्य दोनों भगवान की भक्ति करने से आते हैं, वो पहले आवश्यक नहीं। इसलिए इस दोनों श्लोक में हम देखेंगे कि अन्य मनस्क पहले से ही हो जाते हैं भगवत भक्त। इन लोगों को अन्य मनस्क यानी कि इंडिफरेंट, जो अन्य ढंग से मेहनत कर रहे हैं सिद्धि के लिए, तो जो जो सूचनाएं दी गई उस पर बुद्धिपूर्वक विचार करके वो लोग काफी अंदर घोलते रहते हैं अपनी खोपड़ी में। इतना मंथन करना पड़ता है तब वो लोग समझ सकते हैं कि भाई ये जो बुद्धि इन सांसारिक या सिद्धियों कीचड़ में से पवित्र करनी है तो बहुत मंथन करना पड़ेगा, बहुत चिंतन करना पड़ेगा, और बुद्धि को इसे तरने का मार्ग देना पड़ेगा। तब हम जो अब तक हमें माहिती मिली है, सूचनाएं मिली हैं, तो जो सुना है और सुनने के विषय दोनों में हम भेद नहीं बताएंगे। यानी कि श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, जो सुना है, बहुत सारी माहिती मिलती है, सुनते ही तो मिलती है। तो भगवान के ये भक्तिता के हमारे सारे प्रयत्न पर विरक्ति लानी पड़ती है, नहीं तो ये मोह के कलील में घने जंगल में फंसती ही जाएगी। इसलिए वेदवादरता यानी कि ऐसे लोग वेदों में उलझे रहते हैं, उनके तात्पर्य पर आते नहीं। थोड़ा सा पढ़ लिया इसलिए अपने आप को इनका प्रखर एक्सपर्ट मानते हैं, पंडित मानते हैं। कोई वेदी कहलाता है, कोई द्विवेदी कहलाता है, कोई त्रिवेदी कहलाता है, कोई चतुर्वेदी कहलाता है। उसी तरह उपाध्याय होते हैं, यानी कि कोई अध्वर्यु है, कोई ये है। वो सब वेदों में बताए हुए अनुष्ठानों के ज्ञाता अपना टाइटल ले लेते हैं या अपना नाम उसके साथ जोड़ लेते हैं। चतुर्वेदी ब्राह्मण है, कोई कोई ये, या फिर चार वेदों पढ़ा है। ये परिवार में वो नाम चलाया है लेकिन कोई वेद जानता ही नहीं, फिर भी नाम रखा है चतुर्वेदी। और कई लोग तो कहते हैं द्विवेदी, अरे दुबे कह दो चल जाएगा। द्विवेदी को दुबे कहते हैं और चतुर्वेदी को चौबे, मथुरा के चौबे, सही ना। द्विवेदी और त्रिवेदी चतुर्वेदी है सब न तो कोई वेद के जानकार है, लेकिन ये सारी भौतिक बाबतों में उलझे रहते हैं। भगवान कहते कि सीधे ही कृष्ण भावनामृत अंगीकार करके हम ये मोह कलील से भी छूट जाते हैं। सीधे ही हम अपनी बुद्धि को भवसागर पार कराने के लिए स्थिर कर। तो श्रुति विप्रतिपन्ना, हाँ, ये वैदिक ज्ञान विप्रतिपन्ना यानी कि कर्म फलों से प्रभावित हुए बिना। यदा शास्त्रास्ति निश्चला, जब जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाता है, समाधा व चला बुद्धि सदा, तब योगम यानी कि आत्म साक्षात्कार अवाप्सि तुम प्राप्त करोगे। इसलिए कृष्ण भावनामृत को अन्य वैदिक अनुष्ठानों से हमें अलग सा ही उसका प्रभाव दिखना होता है। ये सीधा भगवान का निर्णय है और भक्तों का भी यही निर्णय होता है। और वेदों में उलझे नहीं रहते, बहुत सारा अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। कल हम गए थे तो वहां देखा कि बहुत सारी किताबें, एक तो कृष्ण पा हरिनाम कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, दूसरे सत्कार पाठ परायण इत्यादि भी चल रहा है, कोई आवश्यकता नहीं है। जब भगवान के अनुसार ये कृष्ण भावनामृत का जो अंगीकार करता है, जिसमें भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य महाप्रभु की जीवनी में जो हमें प्रायोगिक रूप से कैसे भागवत धर्म स्वीकार करना है, कैसे आत्म साक्षात्कार हम भक्ति से कर सकते हैं, ये सारी सूचना हमें मिलती है। तो इतना हम पूर्ण रूप से करें और चार नियमों का पालन, तो इतना काफी है कृष्ण भावना भावित करने के लिए। अन्य अनुष्ठानों की महान आवश्यकता रहती है, लेकिन ये निश्चयात्मक बुद्धि पर जब आए, बुद्धि के साथ जो संकल्प करे क्या, तो कोई चीज करने की आवश्यकता नहीं रहती। ये बहुत लॉजिकली यहां पे समझाया जाता है, दूसरे चीजों के दूसरे अनुष्ठानों की आवश्यकता रहती नहीं। हाँ, तो वो पूर्ण सिद्धि को पाता है, भगवत धाम जाता है, आत्म साक्षात्कार सीधा ही कर सकता है। तो कलयुग में हमें देखो, हमारे तो कोई लायकात वो पुण्य होने के या प्राप्ति के लिए यज्ञदान और तप तीनों क्रिया अपने अपने में वो क्रियाएं तो बहुत फलदायी है, लेकिन इस युग में हम लोग लायक हैं। इसलिए कृष्ण भावनामृत का पूर्ण रूप से उपचार करना चाहिए, जितना भी हो सके तीव्र उपचार करो। फालतू चीजों में हमें हमें अपनी अपनी बुद्धि को रोके मत रखो, वो आवश्यक नहीं, वो युग के अनुसार था। यहां तो इस युग में निश्चयात्मक कृष्ण भावना को स्वीकार करना बड़ा बुद्धिमान कहलाता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की संकीर्तन यज्ञ कृष्ण भावनामृत को श्रीमद भागवत में इस ढंग से स्वीकार किया गया कि यजंती सुमित सान, जिन लोगों में अच्छी बुद्धि रही है वही ग्रहण करेंगे, चैतन्य महाप्रभु की पूजा सेवा करेंगे, अन्य कोई। तो ये दो श्लोक हमें बहुत कंक्लूसिव प्रभुपाद की बहुत कंक्लूसिव हमें सिद्ध करता। कृष्ण भावनामृत में भगवान का नाम ग्रहण करके चार नियमों का पालन करके सारे वेदों के अनुष्ठानों के से भी बेहतर थोड़े से जीवन में तुरंत परम सिद्धि प्राप्त करा देगी। इस तरह बौद्धिक दृष्टि से भी गारंटी मिलती, मान्यता का विषय नहीं रहेगा। बहुत सारी चीजें हम छानबीन कर यहाँ देख सकते, इन दो श्लोकों में भगवान ने क्या अपना कैनवासिंग कर दिया है भक्ति का। इस पर चर्चा हम कितने अंश में स्वीकार करें, कोई अवरोध है, कोई है ऐसा प्रश्न जो कृष्ण भावना स्वीकार करने में हमें झिझकाता है, ऐसे अवरोध है, तो क्यों नहीं हम बुद्धिपूर्वक उसे अपना ले और उसमें विकास करें। ये अपनी प्रपोजल, हम क्यों इसमें अग्रसर न रहे, क्यों आगे न बढ़े। ज्ञान न हो फिर भी भक्ति तो हो सकती है, ज्ञान तो बाय प्रोडक्ट होती है, तो कितना प्राप्त करोगे। एक परम सत्य का ज्ञान तो सीधे ही आपको मिल जाता है, क्योंकि ज्ञान क्या होता है वो हमें स्पष्ट ख्याल नहीं है, इसलिए कितने की बात कर। इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना कोई ज्ञान नहीं, इन्फॉर्मेशन तो भौतिकता में पर कितनी अगाध होती है। हम सब अपने कंप्यूटर में भी लिमिटेड कैपेसिटी गीगाबाइट्स पड़े, वो भी ओवरफ्लो हो जाते, इन्फॉर्मेशन तो आती रहेगी जाती रहेगी। तो ये इन्फॉर्मेशन इज नॉट ज्ञान, ज्ञान तो आत्म साक्षात्कार या अनुभूति का विषय होता है। जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है और अपनी सनातन अवस्था उसमें बनाए रखे, वो तो पूर्णता का, उसमें परसेंटेज की बात नहीं है, पूर्णता का परिचय करा 100% ज्ञान प्राप्त होता, अन्य में 100% भी नहीं, तो आंशिक अनुभूति कराता है। भक्ति करते 100% मिलता ही है। गोपियों वेदों के अनुष्ठान करने गई थी क्या? लेकिन वो स्वयं कई गोपियां श्रुति ही थी, कई गोपियां श्रुति ही, वेदों के अनुष्ठान साक्षात्कार जब उनको हुआ, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य तो भगवान श्री कृष्ण को उपस्थित करना, इनका सनातन व्यवहार स्थापित करना है वेदों का, इसीलिए श्रुतियों को भगवान ने आदेश दिया कि आपका मूल लक्ष्य अब सिद्ध होगा कृष्ण अवतार। तो वो गोपियां बनकर आई, यानी कि ये श्रुतियां जिनमें सब ज्ञान पढ़ा है, अनुभूति भी पढ़ी है, लेकिन फिर भी वो भगवान के संबंध की स्थापना या भक्ति के व्यवहार बिना अधूरी रही, तभी तो इनकी इच्छा भगवान ने पूर्ण की। श्रुतियों में इन्फॉर्मेशन ही रहा, पर लेकिन ये इन्फॉर्मेशन यानी कि जो माहिती थी, माहिती स्वतः शक्ति बनी और शक्ति का रूप लेकर श्रुति पर्सनल गोपी बन गया। इसलिए गंवार जैसी गोपी आपको सांत्वना देने के लिए उद्धव जी को भगवान ने भेजा द्वारका से, तो उद्धव जी अपने ज्ञान पर ज्यादा थोड़ा अहंकार रखते थे कि चलो एक गंवारों को मैं समझाऊंगा कि परम तत्व क्या है, परम ब्रह्म क्या है। लेकिन गए तो ताजुब हो गए, गोपियां निरंतर पर ब्रह्म की चर्चा करती है, उनको तो मुख खोलने का मौका ही नहीं मिला, और शर्मिंदे होकर आना पड़ा। तो कितना ज्ञान चाहिए, ज्ञान तो बाय प्रोडक्ट रूप में आता है, वैराग्य बाय प्रोडक्ट रूप में आता है, भक्ति करो और गुरु के आज्ञा में रह कर भक्ति करो, यह कहा है। छोटी सी भी भक्ति का प्रयोग यदि हम करते हैं, लेकिन उस पर हम जब पूर्ण अपनी भावना कृष्ण के प्रति रखकर हम और गुरु के प्रति रखकर हम करते हैं, तो उसमें से दिव्यता प्रकट होती है। समय भी लग सकता है, जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, जब तक दिव्य ज्ञान प्रकट नहीं होता, थोड़ा सा दिव्य ज्ञान भी 100% होता है। वहां क्वालिटी क्वांटिटी का डिफरेंस नहीं पड़ता अध्यात्म। प्रभुपाद जी को प्रश्न पूछा था कि गुरु के पास कितने ज्ञान की आवश्यकता होती है, तो प्रभुपाद जी ने कहा देखो गुरु तत्व स्वयं कृष्ण होते हैं, जब कृष्ण भगवान स्वयं अपने आप को जितना जानते हैं उतना तो बलराम भी नहीं जानते, सही, और बलराम का अवतार शेषनाग अपनी सहस्त्र प्रणामों से भगवान के गुणगान गाते ही थकते नहीं, क्योंकि उनका कोई पार नहीं होता। तो जब गुरु तत्व या गुरु के प्रतिनिधि आते हैं तो इनके पास कितने ज्ञान की अपेक्षा रखनी चाहिए, तो आप कहोगे कि अरे ये तो कम जानता है। नहीं, यदि कम जानता है लेकिन क्या जानता है, 100% कृष्ण कॉन्शियसनेस जानता है, इतना आवश्यक है। वहां क्वालिटी क्वांटिटी का डिफरेंस डिजोल्व हो जाता है, क्योंकि अध्यात्म में विरोधाभास नहीं है। भौतिकता में हमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों, गुण और घन दोनों, कद जिसे कहते हैं गुण और कद, एक विरोधाभास। प्रभुपाद ने यह उत्तर दिया कि कहीं नहीं लिखा कि गुरु नहीं, गुरु परम तत्व का ज्ञाता है कि नहीं, वो प्राप्त करने के लिए लिखेगा। 1% प्राप्त करना, 2% प्राप्त करना, ये मूर्खता है। यानी कि ईर्ष्या से यदि कोई कहता है अरे तुम्हारे गुरु ने तो ये तो कहा ही नहीं था, देखो वो मेरे पर छोड़ गए, उनके हिसाब से आप लायक नहीं है, अब आप लायक हो गए इसलिए मेरी दीक्षा दी। कहने वाले थे सही,
महाराज प्रभुपाद ने जो मोर देन सेवेंटीज ग्रंथास लिखे ये ग्रंथ वास्तव में तो भक्ति का ज्ञान है, इसको हम भौतिक ज्ञान को लेकर, आप जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं जैसे ज्ञान तो प्रभुपाद ने बोला रीडिंग इज एसेंशियल, अभी आप भगवद्गीता ले रहे हैं तो रीडिंग एंड देन टेलिंग अस, सेम वे आप जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं कि जो ज्ञान आवश्यक नहीं है, इफ गुरु इज इन टोटली कृष्णा कॉन्शियसनेस तो ज्ञान जो है अपरिमाप कोई नहीं है। अगर अंदर कुंडेरी ये कहा जाता है कि उत्तम अधिकारी जो है वो सारे वेदों को जानता है,
वेदों के तात्पर्य को जानता
है, ऑफकोर्स, और वो ही इज वेल वर्स विथ ऑल द शास्त्रास ऑफ
शास्त्रे परे च निष्णातम, निष्णातम यानी कि ही हैज कंक्लूसिव ट्रूथ, ही इज एक्सपर्ट इन कंक्लूसिव ट्रूथ। और यहां कंक्लूसिव ट्रूथ बताया गया, परे मीन्स ट्रांसेंडेंट, शास्त्रे परे च निष्णातम।
इसके अगेंस्ट में एक प्रश्न ये उठता है महाराज कि जब फाइनली जाना ही जाता है कि कृष्ण भावनामृत सर्वोच्च धर्म और कृष्ण ही परम भगवान है, देन मैं एंटी एंड प्रो करके, अगेंस्ट एंड प्रो करके ये बात की है, तो फिर व्हाट इज द रूल यूज ऑफ रीडिंग दीज स्क्रिप्चर्स विद प्रभुपाद हैज गिवन, इफ वन फाइनली नोज एंड एंगेज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस 24 आवर्स, देन इज देयर एनी यूज ऑफ रीडिंग इन दीज बुक्स, दिस इज लाइक नो अगेंस्ट आई एम आस्किंग क्वेश्चन।
रीडिंग इज एसेंशियल बिकॉज दे आर रियलाइज नॉलेज एंड इट विल मेक यू रियलाइज, आफ्टर रियलाइजेशन एंड स्टिकिंग टूगेदर there is no necessity to read further because you are book personified yourself, is it?
It means reading is direct association,
of course. Srila Prabhupada ji ne kaha ke meri kitabe padhi aur regularly padhi aapko anubhuti hogi, guarantee. Unhone to wahan tak kaha ke कोई भी एक पुस्तक भवसागर पार कराने की गारंटी देता, लेकिन कौन पढ़ता है, कोई पढ़ता है? भावना का विषय है, अनुभूति का विषय है, और हरेक की एकमात्र वो जिम्मेदारी बनी रहती है कि यदि कंक्लूसिवली हम देखें 70 पुस्तक लिखने की भी आवश्यकता प्रभुपाद जी को तो नहीं थी, लेकिन ये धर्मशास्त्र जो है उनको यथावत रजू करने में इनके पास जितना जितनी मोहलत थी, जितना समय बचा था उसमें भी इन्होंने कितनी महिच्छा रखी थी। मैं भागवत को 60 बनाऊंगी, वैसे आप वो भी पूछ सकते हैं कि प्रभुपाद जी ने तो दशम स्कंध की शुरुआत के बाद वो तो चले गए, उन्होंने तो कुछ लिखा है, क्या प्रभुपाद ने कुछ अधूरा छोड़ा? फिजिकली तो दशम स्कंध भी खत्म नहीं किया, ग्यारहवीं की तो बात ही कहां, बारहवीं की बात, बट प्रभुपाद वस्कर ही डिड गिव एवरीथिंग, उन्होंने सब कुछ दे दिया। सिर्फ कृष्ण जो दशम स्कंध की संक्षिप्त में उन्होंने बनाया तो ग्यारहवां और बारहवां फिर भी बाकी है, लेकिन आवश्यकता क्या है? प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावना के 100% सूचना है, कई स्टोरी नहीं कही होगी, इसलिए क्या कृष्ण भावना की कमी रही है या कोई सिद्धांत नहीं बताया गया? प्रभुपाद जी के पुस्तक को एक पढ़ने से यदि भवमुक्ति की गारंटी मिलती है तो पढ़ने पढ़ने में भी अंतर होता है, कोई पढ़ते ही जाता है और जीवन में कोई ज्यादा विकास भी नहीं होता, ऐसा भी हो सकता है। इसमें प्रभुपाद जी का तो कोई गुना नहीं, खुद में गुना, तो सुनना तो आता होगा कि नहीं, तो सुनना तो आता होगा कि नहीं, तो सुनने की व्यवस्था कर। यदि एक इंद्रिय खत्म हो जाती है तो ये क्या वो खत्म हुई इंद्रिय दूसरी इंद्रिय सेवा नहीं कर देती? अंधा भी चल सकता है, देख सकता है, तो ज्ञान प्राप्ति के लिए तो सब कुछ हो सकता है, नहीं तो कैसे कर सकते हैं? क्योंकि पंगुम लंग देंगे कृपा श्री गुरु दीनता, अंधा देख सकता है, लंगड़ा चल सकता है, कैसे? और चलनी गिर लंग गए थे, पर्वत भी लांग सकता है, कैसे? लग रहा है चल नहीं, वो चलेगा आध्यात्मिक दृष्टि से, जो लांगना है तो ये भवसागर जैसा वहां बड़ा अंतराय अपने बीच में खड़ा है उसको लांगना है, लंगड़ा भी लांग सकता है, अंधा भी लांग सकता है,
सब लोग हरिबोल कहकर इस ऑलनेस विद्यास महाराज का कार्य महाराज से प्रार्थना करते हैं कि 5-10 मिनट के लिए एक्सटेटिक कीर्तन जो है महाराज करें और हम लोग उसको फॉलो करें। आप बैठ के करने खड़े आए हो तो जाएंगे।
आप सब लोग कृपा करके कीर्तन के लिए खड़े हुए महाराज व्यक्ति कीर्तन
करे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. इस मायने श्लोक है चनार में मुक्तिदान स्वामी के पुष्प प्रसाद की
जय
अनंत कोटि विष्णु की
जय
नारायण सुंदर दास ठाकुर की
जय
प्रेम से गौ से कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद से अद्वैत गदाधर शास्त्री
जय
श्री श्री राधा कृष्ण जय गोपीनाथ श्याम कुंदर राधा जय गोपीनाथ की
जय
गंगा मई की
जय
जमुना मई की जय भक्ति देव की
जय
सिंह जय
सब लोग एक बार फिर से जोर से हरि बोल कहकर महाराज का तालियों से
स्वागत करते हैं। मैं लालीपुर से अनुरोध करूंगा कि मात्र सारे को